तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। मधुबन की बाबा की तपस्वी भूमि में हम सभी पहले गीता बहन जी का एक हाथ की ताली से दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। गीता बहन जी का संक्षिप्त परिचय आपको देंगे। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन का जैसा नाम है वैसा ही उनका जीवन है। फल की इच्छा न रख, कर्म करते जाओ और अपनी स्थिति को सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय में समान रखो। श्रीमद् भगवत गीता की यही दो मूल शिक्षाएं आपका वास्तविक जीवन का परिचय है। ऐसी स्थित प्रज्ञ अवस्था आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की व्यावहारिक शिक्षा प्रशिक्षण एवं व्यक्तिगत पुरुषार्थ से प्राप्त की है। 1969 में आप 14 वर्ष की कोमल आयु में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। 14 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में आप आई। आप अपने विद्यार्थी जीवन में भी अत्यंत मेधावी छात्रा थी। साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड प्रथम स्थान प्राप्त करने का भी गौरव आपने प्राप्त किया, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं ने आपको इतना प्रभावित किया कि 1972 में बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। गुजरात के सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि स्थानों पर भी अपनी सेवाएं प्रदान करने के पश्चात लगातार 14 वर्ष तक भावनगर में सब जोन इंचार्ज के रूप में भी सेवाएं प्रदान की। वर्तमान समय 1993 से 2010 तक आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में नवनिर्मित ज्ञान सरोवर एकेडमी में रिसेप्शन, आवास, निवास एवं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के निमित्त रूप से अपनी विशेष सेवाएं देती रही। साथ ही आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। आप एक कुशल राजयोग एवं स्वप्रबंधन प्रशिक्षिका हैं। ज्ञान सरोवर एकेडमी में विभिन्न विंग्स के जो भी कार्यक्रम चलते हैं उसमें भी अनेक विषयों पर आप व्याख्यान देते हैं। आप विश्वविद्यालय के नियमित राजयोगी विद्यार्थी भाई बहनों, ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनों के सघन प्रशिक्षण प्रोग्राम के भी प्रभावी शिक्षिका हैं। तो ऐसी हमारी अनुभवी गीता बहन जी का आज अनुभव युक्त क्लास हम सभी सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा की असली भूमि में तपस्या के लक्ष्य से आप सभी आए हैं। पांडव भवन में तो कई बार आना होता होगा, पर एक याद के लक्ष्य से आना एक अलग ही चीज है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि मधुबन के निवासी आप है ना? और मधुबन क्यों आते हैं? क्योंकि यहां सहज योगी, निरंतर योगी, स्वतः योगी सहज बन जाते हैं। क्योंकि ये घर, ये स्थान बाबा का है। साकार में बाबा जब थे, पांडव भवन में लोग आते थे और पूछते थे कि ये सब किसका है, तो सभी भाई बहने क्या कहते थे कि बाबा का है। और बाबा से जब पूछते थे कि ये बाबा ये सब किसका है, तो बाबा क्या कहते थे? बच्चों का है। दुनिया में मालिक बनने के झगड़े हैं, है ना? गुरु जाते हैं तो शिष्यों के बीच झगड़े होते हैं कि मैं हकदार हूं, मैं हकदार। यहां तो खुद मालिक ही हकदार बनने तैयार नहीं है। ब्रह्मा बाबा जो निमित्त माध्यम बने, वो ही कहते थे कि ये बच्चों का है। तो हम बच्चे तो कहेंगे ना कि ये तो बाबा का है। प्रैक्टिकल कारोबार में जो हरेक का अपना अपना है, चाहे मधुबन का कारोबार है, सेंटर का है, सेवा का है, या लौकिक परिवार का है, पर जो उसमें ट्रस्टी बनकर रहेगा वो नेचुरल योगी बनेगा। आज बाबा ने कहा ना कि ट्रस्टी बनने से मेरापन नहीं आएगा, क्योंकि ट्रस्टी माना मालिक अलग है। मालिक के तरफ से हम निमित्त है कारोबार करने के लिए, तो मेरापन आएगा ही नहीं ना। और निमित्त है तो मैंपन भी नहीं आएगा। तो जो जहां है, घर में है, सेंटर में है, मधुबन में है, और जिस भी कारोबार में है, अगर हम ट्रस्टी बनकर समर्पण भाव से कारोबार करते हैं, तो वो कारोबार हमें बांधता नहीं, पकड़ता नहीं, हम उसमें फंसते नहीं, फिर कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी हो या कितने भी लोगों से मिलके काम करना, पर ये पाठ अगर पक्का है तो आत्मा सब कुछ करते हुए भी मुक्त रहती है। हम सहज रह सकते, भारी नहीं होंगे, भारी नहीं होंगे, टेंस नहीं होंगे और मुक्त रहेंगे, कुछ भी बांधेगा नहीं। तो योगी बनना सहज है। आप यहां आए हैं, अपने आप को चेक करते होंगे, वहां घर में योग नहीं लगता है तो हम कई कारण बताते हैं, काम इतना है, घर में सारे तो ज्ञान में है नहीं, वाइब्रेशन वायुमंडल अलग है, आसपास आवाज है ना, वहां तो कई कारण है। अब आप यहां चेक कर दे कि अगर यहां योग नहीं लगता है तो क्या कारण है, यहाँ तो आवाज भी नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं है ना, ना माताओं को भोजन बनाना, ना भाइयों को नौकरी पर जाना, कहीं तो और ही मुंझ जाते हैं कि क्या करे क्या करे, किधर जाए, इतने फ्री कभी रहे नहीं ना, तो कईयों को बड़ा विचित्र लगता है कि क्या करे किधर जाए। भोजन भी तैयार है, बाबा के घर में सब सुविधा तैयार, सेवा के हिसाब से भी नहीं आए है ना, स्पेशल तपस्या के लक्ष्य से आए हैं। तो आप चेक करो कि अब मन भटकने का कारण क्या है। हमें अपना वास्तविक कारण समझ में आएगा, जो आंतरिक सूक्ष्म चीजें हैं वहां तो हम व्यक्ति को प्रवृत्ति को जवाबदारी को सेवा को कारण बताते, किसके कारण योग नहीं लगता है। पर यहां अगर बाबा की याद में बैठे हैं और बुद्धि इधर उधर जाती है तो महसूस होगा कि क्या कारण है। कितनी छोटी छोटी बातों से हम अटैच होते हैं ये पता चलता है ना। आप हरेक यहाँ आए हैं 5-6 दिन के लिए, तो घर का या ऑफिस का कारोबार किसी को जवाबदारी दे के ही आए होंगे ना, किसी को जवाबदारी देकर आए हैं ना, पर मन से कितनी बार गए वहां, मैंने ये चीज बताती है कि कहां हम कॉन्शियस है। एक होता है संबंधों में कॉन्शियस, भी मोह है, और एक होता है कि चलो मोह नहीं है पर जो जवाबदारियां हम निभाते हैं वर्क कॉन्शियस होते हैं, जो रोज कामकाज करते हैं ना, उस कामकाज से अटैचमेंट होता है, इसलिए वो वर्क याद आएगा। तो ना बॉडी कॉन्शियस बनना है, ना देहधारी कॉन्शियस बनना है, ना वर्क कॉन्शियस बनना है, हमें तो सोल कॉन्शियस बनना है। कॉन्शियस का अर्थ ये है कि जहां हमारा ज्यादा खिंचाव है, लगाव है, तो वो बुद्धि में आएगा। इसलिए रोज जो भी कारोबार हम करते हैं, घर का, परिवार का, नौकरी का, धंधे का, सेवा का, हमें रोज अपने आप को पक्का कराना होता है कि मैं निमित्त हूं इसको संभालने के लिए, मैं मालिक नहीं, मैं निमित्त, ये बाबा का है, चाहे घर में रहो तो भी अब तो बाबा का ही है ना। और दूसरा, अपने आप को भी हम समझाएं कि मेरा अंतिम लक्ष्य सिर्फ ये कारोबार करना नहीं। हमारा अंतिम लक्ष्य तो योगी बनना है। भाई आप अच्छा बिजनेस करते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप अच्छा घर कारोबार चलाते हैं, धंधा संभालते हैं, आप अच्छे मैनेजर हैं, आप 50-100 एम्प्लॉइज से, घर परिवार से कामकाज करते कराते हैं, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप अच्छी सेवा करते हैं, अच्छे सोशल वर्कर हैं, पर संगम युग तो क्या बनने का है? अच्छा योगी बनने का है। बाबा कहेंगे कि भाई तुम अच्छे योगी नहीं हो, अच्छे सर्विसेबल हो, अच्छे मैनेजर हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, पर अच्छे योगी हैं? माना मैं खुद में खो जाऊं, बाबा में मस्त हो जाऊं, ये मौका है। मधुबन में ये मौका है। अच्छा वहां का याद नहीं आता है मान लो, तो यहां जो हमारी कंपनी है वो याद है, वो कहां गई, आई नहीं अभी तक। भाई यहां तो हमें योग करना है ना, जो तैयार हो वो पहुंच जाओ, फ्रेंड के साथ जाना तो जरूरी नहीं है ना। तो ये भी आप चेक करना कि वहां से तो हम निकल गए पर अब यहां कॉन्शियसनेस हो गई। द्वापर में कितने ऋषि मुनि घरबार छोड़ के जंगलों में, पहाड़ों में चले गए और एक ही उद्देश्य भगवान को पाने का। पता नहीं कितने भयानक जंगल, कितने भयानक पहाड़ियां, गुफाएं, कैसे इन्होंने तपस्या की होगी। कुछ भी कहो, बड़ी चीज तो है ना। हम तो सेफ मधुबन में बैठे, कोई भय की बात भी नहीं है, पर अकेले बाबा की याद में मस्त मन कितना रहता है। दिनचर्या तो मिल गई, पर एक संग, कंपनी, फ्रेंडशिप, कोई खास, वो बुद्धि को खींचता है। ये जो ईश्वरी याद का आनंद, अतिंद्रिय सुख बाबा जिसको कहते हैं, यही तो दिन है। वैसे हम कहते हैं कि बाबा हमें शादी से पहले मिलते तो हम भी समर्पित हो जाते, हाँ कहते हैं कि नहीं। ये तो सिर्फ 4 दिन ही समर्पित होना है तो मन की स्थिति क्या है? चेक करो कौन सी बात खींचती है। शरीर में बुद्धि बार बार जाती है, अभी तो इतना भी शरीर ठीक है, आगे चल के तो जैसे दिन बीतते हैं, आयु होती है, शरीर की तकलीफें तो बढ़ती जाती है, पर इसमें भी दृढ़ता रख के बीमारी के कारण भी शरीर के आकर्षण से मुक्त रहना है और बाबा की याद में रहना है। कलयुगी शरीर है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। आप किसी को कहेंगे आज तो बहुत पांव दुखते हैं, वो कहेंगे हाँ मेरे को भी बहुत सिर दुखता है, हर एक कुछ कहेंगे अपना हर एक को कुछ ना कुछ है। पर वो हम सबने स्वीकार कर लिया है कि ये सब तो होगा ही, कलयुगी शरीर है। कई कॉन्शियस होते हैं, देखो ना मेरे को 10 गोलियां लेनी पड़ती है रोज। अरे भाई कोई बात नहीं, बाबा कहते हैं ना ये दवाई, हाँ वो तो हरेक ले रहा, अपना तो शरीर चलना चाहिए ना, योग और सेवा में विघ्न नहीं आना चाहिए ना। बस जिस भी रीति से शरीर चले चलाना, अगर हम रस और स्वाद से अटैच होंगे तो भी बुद्धि, और कोई बात में नहीं तो खाने में जाएगी, भोजन में जाएगी। एक भाई तंग होके आया कि बहन जी योग में बैठता हूं और खाना भी नहीं याद आता है, क्योंकि टेस्टी या अपने स्वाद का, जैसे हम गुजरातियों को तो है ना तो बुद्धि उसमें जाती। हम शुरू में मधुबन में आए तो हमने, क्योंकि गुजरात में ही रहे इतने साल, तो फिर मधुबन आए। अब मधुबन सेंटर से जब आते थे तो हम तो खाते ही नहीं थे, एक टाइम नाश्ता जो अच्छा लगे वो खाते थे, बाकी अपना जो भर के आते हैं या बेलपुड़ी जो कुछ मतलब वो ही खाते रहते। अब ड्रामा में यही रहने का हुआ। तो मैंने एक दिन शिलू बहन को कहा, मैंने कहा आपको अच्छा लगता है क्या ये बोझ? मेरे को कहती है कि थोड़े दिन के बाद तुमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ खाने की बात नहीं रहेगी, सिर्फ पेट भरने की बात रहेगी। मतलब सेवा ऐसी बेहद के होती है कि वो खाने का रस नहीं रहेगा, भाई चलो खा लो और चलो वापस सेवा में। माना कोई भी अट्रैक्शन, आकर्षण, अटैचमेंट बुद्धि को खींचता है, तो पता चलता है यहां आने के बाद कि मुझे कौन सी बात को जीतना है। अभी भी कौन सी बात बाकी, जिस कारण, क्योंकि मन और बुद्धि बिगर कोई कारण भटकेंगे नहीं। जहां भी मन आपका गया यहां आने के बाद, माना आप समझ लो कि मुझे वहां मेरा संबंध, चाहे व्यक्ति है, प्रवृत्ति है, चीज है, सेवा है, उससे मेरा संबंध अलौकिक न्यारा बनाने की जरूरत है, ताकि वो मेरे मन बुद्धि को खींचे नहीं। मुझे बेंजी ने टॉपिक दिया था निर्विघ्न ब्राह्मण जीवन। कल शाम को बाबा की याद में बैठी तो विचार, मतलब मंथन चल रहा था इस पर। योग में बैठी थी इसलिए मुझे महसूस हुआ कि अगर हम ज्ञानी आत्माएं योगी बन जाएं तो कोई विघ्न ही नहीं। मुझे याद है बड़ी दादी ने दिल्ली में पहला मेला हुआ था रामलीला मैदान में, विजया बहन को पता होगा, फर्स्ट मेला 73 में रामलीला मैदान में हुआ था। पूरा भारत मिलके प्रोग्राम कर रहा था, क्योंकि उस समय, आज तो एक एक सेंटर मेला करता है, उस समय तो इतने भाई बहने नहीं, साधन नहीं, धन नहीं, पूरे भारत से मदद गई थी। अब पूरा भारत इकट्ठा होके करेगा तो नेचुरली स्वभाव संस्कार कुछ न कुछ बातें तो आएगी ना। तो बड़ी दादी जी ने क्लास कराया, दादी ने कहा कि आप अज्ञानियों को कहते हैं कि आप ज्ञान में आ जाओ, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जब भी कोई आपको मिलता है, अपना दुख रोता है, समस्या बताता है, तो आप क्या कहते, हमारे सेंटर पर आओ, 7 दिन का कोर्स करो, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो दादी ने कहा कि अज्ञानियों को आप कहते हो कि ज्ञान में आओ तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दादी ने कहा मैं ज्ञानियों को कहती हूं कि आप योगी बन जाओ तो आपकी सभी समस्याओं का अंत आ जाएगा, क्योंकि जो बाबा की याद के आनंद को अनुभव करेगा जो याद की अलौकिक अनुभूतियां प्राप्त करेगा उसे और इच्छाएं होंगी ही नहीं, उनकी अपेक्षाएं और इच्छाएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि उससे बाबा से ही सर्व प्राप्ति, उसे याद का सुख और आनंद इतना होता है कि एक तो और बातों में बुद्धि उसकी जाएगी नहीं, व्यर्थ में बुद्धि जाएगी नहीं। जो छोटी छोटी प्राप्तियां हैं संगम युग की, जिस दिन हमने कोर्स किया हम ज्ञान में आए, याद करो अपने अपना दिन, सात दिन का आपने कोर्स किया, आपको क्या अच्छा लगा था, क्या बुद्धि में बैठा था, बाबा सत्य ज्ञान वो ही इतना अच्छा लगा कि आप भक्ति छोड़ के बाबा के बन गए। उस समय तो हम जानते भी नहीं थे कि इस ईश्वरीय परिवार में कोई सेवा करनी है, उसमें कोई स्टेज पर बैठना होता है, कोई भाषण करने हैं, कोई चांस लेने हैं। बाबा बाबा का ज्ञान वही अच्छा लगा ना, पर बाबा के बनने के बाद बेहद परिवार से जुड़ते हैं, सेवा के क्षेत्र में आते हैं, उसमें जो छोटी छोटी प्राप्तियां हैं, किसी को मान मिला, शान मिला, महिमा हुई, टोली मिली, सौगात मिला, स्थान मिला, कुछ भी, जब इन छोटी छोटी बातों में बुद्धि जाती है तो डिस्टर्बेंस होता है। एक बाबा के बजाय जब बुद्धि और में भी जाने लगती तो ये बातें आती, जो हमारी ईश्वरीय परिवार के या सेवा में जो विघ्न, वो इन चीजों के कारण। पर बाबा से जो प्राप्तियां हैं, बाबा ने जो ईश्वरीय परिवार से भी, निमित्त बहनों से भी जो इतना प्यार पालना सहयोग हमें मिला, जितना मिला उसमें हमें खुश रहना, सेटिस्फेक्शन। कईयों को बहुत कुछ मिलने के बाद भी और लंबे समय तक मिलने के बाद भी अगर संतुष्टता का गुण नहीं है तो वो डिस्टर्ब होंगे। कि अब दीदी मेरा ध्यान नहीं देती है, वो जो नई आई है ना माता उसका बहुत ध्यान देती, तो भाई सारी जिंदगी आपका ही ध्यान दे। हाँ, आप कभी बड़े होंगे कि नहीं होंगे, और आपके और भाई बहने बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम ही तो सेवा करते हैं, हम ही तो आप समान बनाते हैं, तो छोटे बच्चों का तो ज्यादा ध्यान रखा जाता है ना, तो इसमें ये बात तो है नहीं कि भाई अब हमारा ध्यान नहीं रखा जाता है। अब आप पांव पर हो गए कि नहीं हो गए? हर एक माँ बाप क्या चाहता है, बच्चा जीवन भर अंगुली पकड़ के चले कि अपने पांव पर चले? तो इस जीवन में भी क्या चाहेंगे कि हम अपने पांव पर चले। हम जितना ज्यादा लेते हैं उतना हमारा माइनस भी होता है ना। मान लो मैंने इतना जमा किया पर उसके सामने मैंने इतना लिया भी, अटेंशन खिंचवाया, पालना ली, समय लिया, मान शान लिया, कुछ भी, तो वो जमा में से माइनस तो होगा ना। अच्छा, जीवन भर हमने जो किया अब वही करना है कि हमें आगे भी बढ़ना है? भाई इतने सालों से तो मैं ही करती थी ना, अब इसको क्यों? भाई आप ही करते थे पर अब आप आगे बढ़ेंगे ना। हमें और सेवा करनी है। चलो भाई हमारे साथी अब तैयार हो गए हैं तो हम पुराने अब अपने अनुभव से सेवा करेंगे, अपनी उपस्थिति से करेंगे, हम नए भाई बहनों को प्यार पालना देंगे। तो इस प्रकार ईश्वरीय परिवार में अगर हम एक दो को समझ सके तो मैं समझती हूं कि हर सेंटर निर्विघ्न बन सकता है। जो बाबा की इच्छा है, बाबा ने पहले विकास करवाए, सेंटर नहीं थे, सेंटर खुलवाए, गांव गांव गली गली में सेवाएं की, प्रोग्राम किया, बाबा के बच्चे बढ़े, सेंटर्स बढ़े, सेंटर के मकान बने, पढ़ने की सुविधाएं बढ़ी, सेवा की सुविधाएं बढ़ी, ये सब कुछ बाबा के बच्चों ने मिलके किया ना। अब इससे आगे अब हरेक बाबा के बच्चे शक्तिशाली बने, पहले ज्ञानी बनते हैं फिर सर्विसेबल बनते हैं, अब योगी बने, तपस्वी बने, बाबा मनसा सेवा की बात करते हैं, हमारी शुभ भावना, हर आत्मा के लिए प्यार, तो समय अनुसार सेवा तो बदलेगी ना। हम एक ही सेवा में अटक क्यों जाएं? अब के समय अनुसार बाबा हमसे क्या चाहते? चलन और चेहरे से सेवा, उसके बाद मनसा सेवा थी। जब तक चलन और चेहरा सेवा नहीं करता उसका मन भी नहीं कर सकता सेवा। तो हर सेंटर निर्विघ्न बन सकता है। हमें एक दोस्त से अपेक्षाएं नहीं, हमें तो एक दो को सहयोग देना है। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है। दूसरा कि बाबा ने सत्य ज्ञान हमें दिया, सब कुछ समझा दिया, साकार बातें, अव्यक्त बातें बार बार रिवाइज भी बाबा ने कर दी। मतलब भगवान को जो कहना था उसने कह दिया है। गीता में कहा है ना अर्जुन को, तुमको जो कहना था, जो समझाना था मैंने समझा दिया। आखिर भगवान ने कह दिया यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार जो करना है वो करो। बाबा भी मुरली में हिंदी में कहते हैं कि आखिर कितना समझाऊं, समझा समझा के कितना समझा, आता है ना मुरली में, बहुत कुछ समझा दी। अब हमें कहना है बाबा को कि बाबा आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। वचनम तव करेष्यसि, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। इस साल हमारी एनुअल मीटिंग हुई, दादी गुलजार जी थे, पूरी मीटिंग में बार बार जब भी कुछ पूछा दादी ने बार बार सिर्फ दो ही बात कही। कितना भी इधर का उधर का पूछते थे पर दादी तो बाप दादा का रूप बन के बैठी थी, दो ही बात दादी ने बार बार कही। एक तो बाबा की जो ये इच्छा है कि ईश्वरीय परिवार हर सेंटर निर्विघ्न बने, ये करके दिखाओ। कितने भी सेवा के प्लान बताए पर दादी बार बार वो ही कहे कि नहीं, बाबा ने जो कहा है कि निर्विघ्न होके बताओ वो करके दिखाओ। और दूसरा दादी ने कहा कि सुनना माना करना। भगवान से हम सभी ने कितने महावाक्य सुने, दादी ने कहा सुनना माना करना। भगवान का कहना और हमारा करना, बस। अब हम सब ये लक्ष्य बना दे कि बस बाबा ने जो कहा है वो मुझे करके दिखाना। आप सब क्या समझते हैं, बाबा जो कहते हैं वो करना आप सबका भी काम है या सिर्फ समर्पितों का है? सबका है ना। सेंटर निर्विघ्न बनाना सेंटर में रहने वालों का काम है कि हम सबका है? हम सबका है। देखो मैं भी संपूर्ण नहीं हूं, आप भी संपूर्ण नहीं है, तो हमें मिलके ही करना है ना। हरेक अपना स्वदर्शन करे कि मुझे अपने आप को कहां बदलना है। बस हम दूसरों के मालिक तो नहीं बन सकते ना, बन सकते? आप अपने बच्चों को भी कुछ नहीं कह पाते, कह पाते? फिर हम दूसरों के मालिक तो नहीं बन सकते ना, पर हम बाबा को ये तो कह सकते हैं कि बाबा मैं अपनी गारंटी करती हूं कि मेरे तरफ से आपको कोई विघ्न नहीं है, ये कर सकते हैं तो हाथ ऊपर कर। सबने किया हा? बहुत अच्छे। हम ये तो गारंटी दे सकते हैं ना कि बाबा मेरे तरफ से आपको कोई विघ्न नहीं है। बाबा खातिर, विश्व के खातिर भी हमें करना है। एक दो के सामने तो अभिमान आता है तो हम झुकते नहीं, पर बाबा खातिर कर सकते हैं, झुक सकते हैं, मर सकते हैं। बरोबर हाँ नहीं कर रहे हा? कर सकते हैं हर बात में बाबा खातिर। बस इस यज्ञ को संपन्न करने के खातिर विश्व की हालात देखते हैं तो सचमुच दिल में होता है कि अब सचमुच संपूर्ण बन जाना चाहिए हमें, क्योंकि इस दुनिया में जीने लायक नहीं है। कईयों की हालत जब समाचार आप सुनो तो आपको लगेगा कि सचमुच जो बाबा कहते हैं ना कि आपको आवाज नहीं सुनाई देती। माना एक इंसान के साथ कितना नीच व्यवहार हो सकता है, आप समाचार सुनते होंगे क्या क्या हो रहा है दुनिया में। हमें तो विश्व बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी चढ़ती कला होगी तो सबका भला होगा, तुम संपूर्ण बनेंगे तो इन आत्माओं की मुक्ति होंगी। हम उसी लक्ष्य में रहे। दूसरा, निर्विघ्न ब्राह्मण जीवन, ये तो ब्राह्मण परिवार के हिसाब से मैंने बताया, क्योंकि हम अकेले तो नहीं है ना, पूरा परिवार है और सेवा से भी हम जुड़े हुए हैं ना, तो ये धारणाएं हमारी जरूरी है ईश्वरीय परिवार में रहते हुए और सेवा में रहते हुए। पर व्यक्तिगत ब्राह्मण जीवन में, व्यक्तिगत ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न बनाने के लिए खुद को, खुद से माया खत्म होनी चाहिए। जो शुरू में मैंने बात की ना कि आप यहां देखो, कोई कारण नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, कोई कामकाज नहीं, फिर भी मैं बाबा में मगन हो सकती हूं, नहीं हो पाती हूं, मतलब अभी भी कोई ना कोई खुद को ही खुद से विघ्न है। यही माया है, अब हमारे लिए यही माया है। मुझे किसी भी प्रकार का मानसिक स्तर पर भी माया नहीं आनी चाहिए, कोई भी विकार नहीं आना चाहिए। अपने अंदर को तो हम जानते हैं ना, बाहर से तो हर कोई जानता है कि ये सफेद वस्त्रधारी है, योगी है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ज्ञानी हैं, पर हम अपने अंदर के युद्ध को तो जानते हैं ना, हर एक का अपना अपना है। तो अपना चेक करो, मेरी अपनी मुख्य कमजोरी कौन सी, मुझे कहां माया आती, मान लो मुझे देह का आकर्षण होता है, पर हो सकता है दूसरे के लिए ये पॉइंट माया नहीं, उनको गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा भी नहीं आता है, पर अंदर अंदर मन व्यर्थ चलता है। इसलिए अब हरेक को जैसे एग्जाम आती है तो हरेक अपना देखता है ना कि मैं किस सब्जेक्ट में ज्यादा वीक हूं, उसको मुझे ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। बाबा तो जनरल ओवरऑल हम सबके लिए बताते हैं, पर मैं पर्टिकुलर किस बात में कमजोर हूं, मुझे किस बात में माया आती है, लोभ लालच मोह गुस्सा ईर्ष्या व्यर्थ बोल व्यर्थ विचार कुछ भी, मतलब मुझे उसको खत्म करना है। बाबा कहते हैं ना, जो कमजोरी है आपको वही विघ्न सामने आएगा। एक भाई ने कहा कि भाई दुनिया में भ्रष्टाचार है, मेरा तेरा है, लड़ाई झगड़ा है, इसलिए हम ज्ञान में आए, इन बातों से मुक्त हो जाएंगे। पर यहां भी फिर वो बातें आती, तो मैंने कहा कि देखो दुनिया में भ्रष्टाचार है, लड़ाई झगड़ा है, मेरा तेरा है, तो आप वहां से ज्ञान में आए, पर वो सब कुछ दुनिया में भले हैं, मेरे में ना हो ये शक्ति तो भरी नहीं ना, तो यहां फिर वही बातें मुझे डिस्टर्ब करें, वो शक्ति तो मुझे भरनी पड़ेगी ना, ताकि वो बातें मुझे हिलाए नहीं। यहां भी तो हम नंबरवार पुरुषार्थी है ना, चाहे हम मधुबन में रहने वाले, चाहे सेंटर में रहने वाले, चाहे आप सभी, हर कोई इसी दुनिया से ही बाबा के ज्ञान में आया है ना, कि कोई ऊपर से आया है, यहां से ही आए, तो हम सब में कुछ ना कुछ तो है ना, तो मुझे वो कमजोरी जब तक मैं नहीं भरूंगी, मेरे लिए वो बात पेपर ही रहेगी। एक भाई को संगठन में रहना मुश्किल लगता था, क्योंकि कोई अपमान करे वो सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो संगठन में ज्यादा नहीं जाएंगे, सेवा में बहुत मदद करेंगे, पर वो सेवा जो व्यक्तिगत करे, संगठित होके करने में उनको अपमान सहन नहीं होता, पर कहीं से भी वो बात उसके सामने आ जाती थी, जिस बात की कमजोरी है वो पेपर आएगा ही। मुझे परिस्थिति से भागना नहीं है, कमजोरी को भरना है। जिस बात की मेरे में कमी है वो मुझे भरना है, फिर मुझे कोई बात हिलाएगी नहीं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। तो निर्विघ्न बनने के लिए व्यक्तिगत माया को खत्म करना है, मेरे लिए कौन सी बात माया है वो चेक कर, नोट कर, उसको मुझे खत्म करना है। और हम हरेक बन जाएंगे तो यज्ञ और सेंटर तो अपने आप बन जाएगा ना। तो आज इंटरनेशनल योग का दिन है, इसलिए यहीं समाप्त करते हैं। सबको वहां संगठित होकर यहीं करना। अच्छा, मैं सोचा वहां चले।
ओम शांति। हम बहुत ही गीता दीदी का तालियों के द्वारा स्वागत करते हैं इस संध्या के समय पर। बहुत ही अच्छी झोली भर करके सभी को बहुत कुछ प्रेरणाएं दी। और अभी मैं समझती हूँ कि किसी के आगे कोई भी प्रकार का विघ्न आएगा ही नहीं, क्योंकि आज बहुत ही निर्विघ्न बनने का पाठ पक्का कर लिया है। आएगा, आप एक हाथ से ऐसा बता के दिखाओ, आएगा या नहीं आएगा? सभी बोलो नहीं आएगा। व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं, सेंटर में भी नहीं, अपने लौकिक परिवार में भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। बहुत ही अच्छा, आप सभी के लिए एक बार तालियां बजा दो। और अभी शाम के ये इंटरनेशनल योग है, तो हमको गीता दीदी आज यहाँ एक घंटा योग कराएंगे। और सभी को अच्छी तरह से बैठना है, और किसी को भी न झुटका खाना है न नींद करनी है। वैसे तो ये समय पर नहीं होता, लेकिन फिर भी रिफ्रेश होकर के अच्छी तरह से एक घंटा बाबा की याद में पावरफुल योग करना है। ओम शांति।
ओम शांति। बिल्कुल साइलेंस में खड़े हो जाए। बिल्कुल साइलेंस, खुद में मगन, शरीर से पोजीशन चेंज करेंगे पर मन न्यारा और एकाग्र। पांच अभ्यास हम करेंगे जो हमें योगी बनने में, निर्विघ्न बनने में मदद करते हैं। पहला अभ्यास स्वयं में खो जाए, मस्त हो जाए। मेरा अपना दिव्य अलौकिक निराकार आत्मस्वरूप अविनाशी चैतन्य शक्ति स्वरूप मैं मेरा असली सत्य पवित्र शुद्ध स्वरूप मुझ आत्मा के आसपास जो कुछ है शरीर साधन संबंध कार्य समाज संसार सब कुछ विनाशी है परिवर्तनशील है मैं आत्मा इन हलचल के बीच अचल शांत राइट साइड घूम जाइए दूसरा अभ्यास बाबा में मगन जीवन का मूल खजाना मिल गया है स्वयं जगत का मालिक मिल गया है सर्व प्राप्तियों की खान मिल गई है बाबा मेरा सर्वस्व है बाबा मेरा संसार है मेरे सर्व संबंध उनसे मेरी सर्व प्राप्तियां उनसे
मैं और बाबा। अब तो बाबा ही बाबा। राइट साइड घूम जाइए, तीसरा अभ्यास स्वयं के पार्ट में। ट्रस्टी बाबा मेरा मालिक, मैं उनके तरफ से निमित्त। दूसरों के पार्ट में साक्षी दृष्टा। और शुभ भावना, तो इस दुनिया में रहते हुए और पार्ट प्ले करते हुए न्यारा और प्यारा राइट साइड घूम जाए। चौथा अभ्यास निरंतर मन की आंख से असली घर को देखना, मैं मूल वतन वासी निराकार बिंदु आत्मा या सूक्ष्म वतन वासी डबल लाइट फरिश्ता, शरीर से इस दुनिया में मन बुद्धि से असली घर में। वापस घर जाना है, और नई दुनिया में आना है। राइट साइड घूम जाए, मास्टर दाता बनना है, वरदाता बनना है, मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। मेरा अस्तित्व मेरी उपस्थिति कल्याणकारी, प्रत्यक्ष परोक्ष जाने अनजाने, मुझे सबको देना है। उपयोगी बनना है, बाबा मुझे देते हैं और मुझे सबको देना है। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, बैठ जाए। आज विश्व योग दिन है, विश्व की आत्माओं को शांति, आनंद, प्रेम देना है। बैठे बैठे अभ्यास करेंगे। इस अंतिम जन्म में जिस लौकिक परिवार से मैं जुड़ी हूं, लौकिक मित्र संबंधी और जो मेरे कार्य क्षेत्र के साथी हैं, बुद्धि के स्क्रीन पर इमर्ज करें। इन सब के लिए मेरी शुभ भावना। ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, शिव बाबा की छत्र छाया में रहे। दिल की दुआएं दे, मुझ योगी का कर्तव्य है इन सबको सुखी बनाना, बाबा से जोड़ना।
बिल्कुल शांति से बैठी बैठी राइट साइड घूमे जो नीचे बैठे जिस अलौकिक परिवार से मैं जुड़ा हूं मैं जहां रोज पढ़ाई पढ़ता हूं जहां से पालना लेता हूं ये ईश्वरीय परिवार सभी ब्राह्मण आत्माएं मेरे अलौकिक ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मुझे इनका सहयोगी बनना है हमें मिलकर तीव्र पुरुषार्थी बन संपूर्ण बनना है ब्रह्मा बाप समान बनना निर्विघ्न निर्विकारी बनना है इस लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनना है भगवान की चुनी हुई ये आत्माएं विजयी बन जाए। स्वयं निर्विघ्न बने, यज्ञ रक्षक बने। राइट साइड घूम जाए शांति से। सारे विश्व की आत्माओं को सर्च लाइट दे, विश्व के गोले को इमर्ज करें। विश्व की आत्माएं ईश्वरीय परिवार है, सभी आत्माओं का आह्वान करें। संदेश दे, कि भगवान आ चुके हैं। वर्षा दे रहे हैं। बहुत जल्दी स्वर्णिम सवेरा होने वाला है। स्वयं को जाने पिता को पहचाने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करे। एक फरिश्ता होने के नाते मेरा कर्तव्य है विश्व की आत्माओं के दुख दर्द को मिटाना, सबको बाबा से जोड़ना, राइट साइड घूम जाइए। समस्त प्रकृति जगत पांचों ही तत्व पशु पंछी सारी प्रकृति जगत को इमर्ज करें। योगदान करें। पूरे ड्रामा में प्रकृति हमारी साथी रही है। हमारी सेवा की है। ये पशु पंछी हमारे मददगार उपयोगी रहे। हमें आनंद दिया है। ये हमें फॉलो करते रहे। अब हमें इनको सही मार्ग बताना है। पावन बनाना। सतो प्रधान बनाना है। हमें स्वयं की लाइट माइट से प्रकृति को पावन बनने में साथ देना है। युग के वाइब्रेशंस देना। विश्व परिवर्तन में ये हमारे साथी हैं, हमें संपूर्ण बन इनको भी सतो प्रधान बनाना है। जब मैं बाबा से कंबाइंड रहती हूँ, प्रकृति भी सेवाधारी बन जाती। मुझे इनको प्यार करना है, रक्षक बनना है। मुझे स्वयं स्वयं को योग में रखना है। एक ही लगन बाबा में समा जाना बाबा जैसा बनाए सदा बाबा के साथ रहना।